हिंदी कहानी एक परिचय। कहानी कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। इसका विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनोटेड कॉमा जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। इनवर्टेड कॉमा बंद। कोष्टक में हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 274। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार गीत और कहानी मानव सभ्यता से साक्षरता काल से पहले से जुड़ी हुई है। गीत में मनुष्य ने अपने को व्यक्त किया और कहानी से दूसरों का मनोरंजन। आदिम काल से आती ये प्रवृत्तियाँ इन दोनों काव्य रूपों से आज भी जुड़ी दिखती हैं। नोटेड कॉमा बंद। कोष्टक में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पृष्ठ 170। स्पष्ट है कि कहानी वाचिक परंपरा से समबद्ध प्राचीन प्रवृत्ति है। प्रारंभ में इसका उद्देश्य मनोरंजन था। इसका विस्तार नीति और उपदेश को जोड़कर हुआ। वास्तव में वैयक्तिक सामाजिक अनुभवों और अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए कहानी को माध्यम बनाया गया। आधुनिक काल में कहानी गद्य की अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। हेडिंग विधा के रूप में कहानी। विधा के रूप में कहानी का आशय आधुनिक कहानी से है, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। इसके उद्भव का श्रेय पाश्चात्य साहित्य में अमेरिका के एडगर एलन पो कोष्टक में 1809 से लेकर 1849 को है। इन्होंने सर्वप्रथम कहानी का स्वरूप और उसके लक्षण निर्धारित किए। उनके अनुसार कहानी एक निश्चित प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है, जिसके पढ़ने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। पढ़ने में लगने वाला समय और छपाई में पृष्ठों की संख्या के आधार पर कहानी का स्वरूप विश्लेषण ऊपरी विश्लेषण है और इस कारण विवादास्पद भी। इसमें संदेह नहीं कि कहानी का कलेवर छोटा होता है, लेकिन उसकी न्यूनतम या अधिकतम पृष्ठ संख्या निर्धारित करना या उसके पढ़ने में लगने वाला न्यूनतम या अधिकतम समय निर्धारित करना कहानी के साथ बेमानी है। फिर भी आरंभिक दौर में कहानी को उपन्यास कोष्टक में नॉवेल से अलगाने के लिए इस तरह के वर्गीकरण की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ चेंज। अंग्रेजी में आधुनिक कहानी का विकास 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ। अमेरिका और यूरोप के आरंभिक कहानी लेखकों में हॉफमैन, जैकब, ग्रिम, ब्रेड हॉट, पो, हार्थन आदि प्रमुख हैं। रूस में पुश्किन 1830 द्वारा कहानी साहित्य का आरंभ हुआ। पेज 2। गंगोल, तुर्गेनेव भी इस समय कहानियां लिख रहे थे। हिंदी में आधुनिक कहानी की शुरुआत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई। एक प्रमुख साहित्यिक विधा के रूप में कहानी के विकास के साथ इसे परिभाषित करने का प्रयास हुए। पैराग्राफ चेंज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नोटेड कॉमा सादे ढंग से केवल अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में परिवसित होने वाली गद्य विधा कहानी है। इनोटेड कॉमा बंद। प्रेमचंद के शब्दों में कहानी ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने सुमुत्रत रूप में दृष्टिगोचर होता है। इनवर्टेड कॉमा बंद। हिंदी आलोचना में कहानी को प्रतिष्ठित करने वाले नामवर सिंह को यह बात खटकती है कि जीवन के लघु प्रसंगों को लेकर लिखी जाने वाली कहानी स्वयं भी लघु समझी जाती है। उनके शब्दों में इंटर कॉमा, लोगों की यह धारणा गलत है कि कहानी जीवन के एक टुकड़े को लेकर चलती है, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात कही नहीं जा सकती। कहानी जीवन के टुकड़े में निहित अंतर्विरोध, द्वंद्व, संक्रांति अथवा क्राइसिस को पकड़ने की कोशिश करती है। इनवर्टेड कॉमा बंद। कहानी नई कहानी पृष्ठ 25। इस तरह कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। पैराग्राफ चेंज। कहानी अपने कलेवर में अत्यंत छोटी पर उद्देश्य में अत्यंत बड़ी हो सकती है, उसे परिभाषा में बांधना कठिन है। हाँ, उसके कुछ लक्षण या विशेषताएं बताई जा सकती है। कहानी में प्रायः एक ही वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है और उसमें संवेदनात्मक अनुभूति होती है। कहानी के केंद्र में कोई विशेष प्रसंग, घटना, अनुभूति, भाव या क्षण होता है। कथानक, चरित्र, घटनाओं का आकार प्रायः छोटा होता है। इसका आशय यह नहीं कि उसमें उल्लिखित, संकेतित या व्यंजित समस्या भी छोटी होती है। कहानी अपेक्षाकृत छोटे प्रसंग को समेटती है, लेकिन ये प्रसंग कभी-कभी जीवन के बड़े प्रसंगों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन छोटे-छोटे प्रसंगों से मिलकर ही व्यापक बनता है। पैराग्राफ चेंज। कहानी जीवन का रंग है, जीवन के विविध रंग है। जीवन को उसके विविध रंगों के साथ कहानी अभिव्यक्त करती है। कहानी का निश्चित उद्देश्य होता है मनोरंजन, उपदेश से आगे बढ़कर कहानी जीवन। समाज व्यवस्था की जटिलताओं और विसंगतियों का पर्दाफाश करती है। वह अपने छोटे कलेवर में जीवन जगत के जटिल और प्रगाढ़ अनुभूतियों को समेटती है। अनुभवाश्रित यथार्थ का उद्घाटन करके वह जीवन, समाज और व्यवस्था के आवरण को बेनकाब करती है। कभी-कभी वह क्षण में जिए गए जीवन के महत्तम सत्य और महसूस की गई अनुभूति को उद्घाटित करती है। पैराग्राफ चेंज। पारंपरिक विश्लेषण में कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। ये कहानी के अनिवार्य अंग है। पहला, कथानक। दूसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा, संवाद। चौथा, वातावरण या देश काल। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य। पेज 3। कथानक कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह कहानी का आधार है। कहानी का प्रसंग विशेष कोष्ठक में या घटना कथानक के रूप में अभिव्यक्त होता है। आरंभ में कथानक के अभाव में कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कालांतर में कथानक की अनिवार्यता को दूर करने के प्रयास हुए, पर ये प्रयास सफल न हुए। आधुनिक कहानियों में कथानक का निषेध नहीं है, पर उसका ह्रास हुआ। अब कहानी में घटना प्रसंगों के विस्तार वर्णन की अपेक्षा स्थितियों, मन स्थितियों पर फोकस रहता है। जीवन जगत की यथार्थ स्थितियों, मन स्थितियों से जुड़ा कथानक महत्वपूर्ण होता है। कथानक का निर्माण करते समय कहानीकार को युग बोध और भाव बोध का ध्यान रखना चाहिए। अरस्तु ने कथानक में 3 कथा स्थितियां मानी है, आरंभ, मध्य और अंत। कहानी का आरंभ रोचक, मध्य विचारोत्तेजक और अंत प्रभावोत्पादक होना चाहिए। कथानक जीवन और यथार्थ से संबद्ध होना चाहिए। कथा के मध्य में उत्कर्ष होना चाहिए। कथानक में परिवर्तन से रोचकता पैदा होती है, लेकिन उसकी प्रभावों उत्पादकता और स्वाभाविकता के लिए क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। कथानक में परिवर्तन के लिए अरस्तु संभाव्यता का नियम बताता है। कथानक में कल्पना का भी महत्व है। भावात्मक कहानियों में द्वंद्व घटना का स्थान ले लेता है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में अनेक बार उत्कर्ष कहानी के अंत में होता है। स्पष्ट है कि कथानक कहानी का आधार है, लेकिन कहानी ने जिस तरह अपना स्वरूप विस्तार किया है, उसे कथानक की किसी निश्चित परिपाटी में बांधना न तो उचित है और न ही संभव। पैराग्राफ चेंज। कथानक को व्यक्त करने के लिए कहानीकार को कुछ पात्रों की योजना करनी पड़ती है। पात्रों के माध्यम से ही कथानक आगे बढ़ता है और कहानी का मूल भाव व्यक्त होता है। आरंभ में चरित्र वर्णन की भी स्थिति परिपाटी थी। नायक के अंदर कुछ निश्चित गुणों का होना अनिवार्य था। समाज की जटिलताओं के बढ़ने, विज्ञान के साथ मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के विकास और प्रभाव के चरित्र चित्रण की परिपाटी को बदल दिया। प्रगतिवादी दृष्टि ने भी आदर्श चरित्र की जगह यथार्थ चरित्र पर जोर दिया। धीरे धीरे कहानी में आदर्श और नैतिक चरित्र के नायकों की जगह यथार्थ और बहुमुखी चरित्रों ने ले लिया। यह कहानी के लिए अच्छा ही हुआ। कब तक कहानी आदर्श और नैतिक चरित्रों की बोझ को ढोती? जीवन जगत से करीब होती कहानी ने जीवन जगत के यथार्थ पात्रों को अपने भीतर समेटा, उसे केंद्रीय महत्व दिया। कहानी के चरित्रों का कहानी के कथानक और उद्देश्य से सीधा संबंध होता है। कहानी के चरित्र कई तरह के होते हैं। कुछ वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ व्यक्ति का। अनेक चरित्र प्रतीकात्मक होते हैं। नई कहानी शिल्प के स्तर पर नई कविता से होड़ लेती है। पेज 4। कविता के अनेक तत्व नई कहानी के अनिवार्य तत्व बनते हैं। ऐसे में कहानी के चरित्र चित्रण में भी प्रतीकात्मक चरित्रों का उपादेयता बढ़ी। वर्तमान कहानी कथानक से ज्यादा ध्यान चरित्रों की निर्मित पर केंद्रित करती है। कहानी में चरित्रों की महत्ता का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि ऐसी कहानियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनका नाम कोष्ठक में शीर्षक उनके प्रमुख पात्रों के नाम पर है। पैराग्राफ चेंज। संवाद नाटक का अनिवार्य तत्व है। इसके अभाव में नाटक नहीं हो सकता। नाटक में संवाद इतना अनिवार्य नहीं है, फिर भी इसकी उपादेयता है। संवाद के माध्यम से कहानी के कथानक का प्रवाह आगे बढ़ता है और संवाद के माध्यम से चरित्रों की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। आरंभ में कहानी में संवाद की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी। वर्तमान में कहानीकार परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर भी संवाद के बगैर प्रायः काम नहीं चलता। संवाद या कथोपकथन निर्माण में सजीवता, भाषा की प्रसंगानुकूलता और चरित्र विकास को ध्यान में रखा जाता है। अच्छी संवाद योजना से न केवल कथानक रोचक बनता है, बल्कि पाठक को कहानी के केंद्रीय भाव तक पहुंचने में मदद मिलती है। कहानी की संप्रेषणीयता में इसका महत्व निर्विवाद है। पैराग्राफ चेंज। वातावरण या देशकाल कहानी के पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। कहानी का आधार कथानक है और कथानक का आधार वातावरण या देशकाल। जीवन जगत समाज की कितनी भी जटिल और गंभीर समस्या क्यों न हो, उपयुक्त वातावरण निर्माण कोष्टक में पृष्ठभूमि के अभाव में उसकी प्रभावात्मकता खंडित होगी। समस्या को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में, चरित्रों की जटिलता को स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करने में वातावरण का विशेष योगदान होता है। पहले की कहानियों में वातावरण के नाम पर प्राकृतिक या भौगोलिक चित्रण होता था। कहानी के स्वरूप परिवर्तन के साथ समस्या के वातावरण के रूप में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण वातावरण निर्माण के स्वरूप को बदलने का कार्य करता है। ग्राम कथाओं, खासकर आंचलिक कहानियों में तो वातावरण या परिवेश इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वही मुख्य पात्र की जगह ले लेता है। पैराग्राफ चेंज, संवेदना कहानी की आत्मा है तो भाषा उसका शरीर। संवेदना भाषा के माध्यम से ही व्यक्त होती है और अभिव्यक्ति का विशेष ढंग शैली कहलाता है। भाषा के संदर्भ में कहानी के लिए निश्चित परिपाटी तय करना उचित नहीं, फिर भी यह कहा जा सकता है कि भाव के अनुरूप भाषा की योजना से कहानी की प्रभावात्मकता बढ़ती है। सरल देशज तद्भव युक्त शब्दों से लेकर कठिन संस्कृत निष्ठ तत्सम और समास प्रधान शब्दावली तक में लिखी गई कहानियाँ सफल रही हैं। कहानी के लिए प्रायः सरल सहज प्रभावपूर्ण भाषा की वकालत की जाती है, लेकिन नई कहानी में चित्रात्मकता, सांकेतिकता जैसे भाषा गुणों की तरफ कहानीकारों का आकर्षण बढ़ा। कहानी साहित्य के केंद्र में प्रतिष्ठित होने के लिए साहित्य के कलात्मक पैमाने को स्वीकार करते हुए प्रतीकात्मकता और व्यंजना शक्ति का सहारा लेती है। पेज 5, शैली के स्तर पर कहानी कमेंट्री फ्लैशबैक कोष्ठक में पूर्व दीप्ति रिपोर्ट ताज शैली को भी अपनाती है। कहानी में मैं की शैली का प्रयोग अनेक कहानीकारों ने किया है। कहानी में बिंब और फैंटेसी के प्रयोग भी अब अजूबा नहीं रह गए। उदय प्रकाश की चर्चित कहानी तिरिच इसका उदाहरण है। पैराग्राफ चेंज, किसी भी कार्य या रचना के पीछे एक उद्देश्य होता है। कहानीकार कहानी के माध्यम से किसी घटना, समस्या या प्रसंग विशेष में अपना निहित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः इसी उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए कहानी के कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली का निर्माण होता है। कहानी का केंद्रीय तत्व उद्देश्य होता है। यह कई बार प्रत्यक्ष या स्पष्ट होता है, पर अनेक बार घटनाओं, परिवेश, संवाद, चरित्र या भाषा शैली की प्रतीकात्मक में निहित होता है। कहानी के संपूर्ण रचना विधान का उद्देश्य ही निहित उद्देश्य को पाठक तक पहुंचाना है। प्रायः कहानीकार की विचारधारा ही कहानी के उद्देश्य के रूप में सामने आती है। विचारधारा की सीधी अभिव्यक्ति काल मार्क्स भी नहीं चाहते थे, कहानीकार प्रेमचंद भी। इनके अनुसार विचार रचना में जितना छिपे हुए रूप में व्यक्त हो उतना ही अच्छा है। कहानीकार की मजबूरी है कि उसे उद्देश्य को प्रकट करना होता है, लेकिन छिपे हुए रूप में। पैराग्राफ चेंज, उपरोक्त वर्णित तत्व कहानी के अनिवार्य अंग है, यद्यपि महत्व की दृष्टि से कोई आरोही अवरोही रेखा नहीं खींची जा सकती। कहानी विधा के महत्वपूर्ण होने के साथ हिंदी आलोचना में कहानी आलोचना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कहानी के महत्वपूर्ण आलोचक नामवर सिंह की दृष्टि में कहानी की सफलता का अर्थ कहानी की सार्थकता है। उनके अनुसार कहानी का शिल्प की दृष्टि से सफल होना ही काफी नहीं, बल्कि वर्तमान वास्तविकता के सम्मुख उसकी सार्थकता भी परखी जानी चाहिए। कहानी में कहानीपन पर कम ही चर्चा की गई है, जबकि वह कहानी का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। नामवर सिंह के अनुसार इनोटेड कॉमा, कविता में जो स्थान लय का है कहानी में वही स्थान कहानीपन का है। इनोटेड कॉमा बंद। कहानी नई कहानी पृष्ठ 23। विधा के रूप में कहानी को अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए इस कहानीपन को बनाए रखना होगा, जीवन जगत समाज और समय से टकराने के साथ।